الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا. اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن جلد نمبر 5 سے آیت نمبر 24 کی تفسیر معارف و مسائل ہم پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں، جس میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ جبکہ یہ بڑے ہو گئے تھے، ان کو نبوت مل چکی تھی، علموں حکموں و علمن، رائٹ، آتیناہ حکمن و علمن ہو چکا تھا، ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے نا، پھر جس گھر میں یہ رہتے تھے، عزیز مصر کے گھر میں، تو اس کی بیوی نے ان کو جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کری. تو اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے فردر ہے نا، مزید اس کی ڈسکرپشن باقاعدہ اللہ رب العزت دیتے ہیں، وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ، اور تحقیق لقد لام یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو ڈبل تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اس عورت نے ان کا قصد کیا، ان کی طرف یعنی فکر کری، ان کو کس طرح سے جیسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں پھنسائے، ٹھیک ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں وہ ہم بھی ہا، اور اس نے بھی قصد کیا، اس نے قصد کیا، اس نے اس طرف فکر کری. لولا ارآ برہان ربی، نہیں اگر ہوتا یہ کہ وہ دیکھتا اپنے رب کی برہان کو. برہان کہتے ہیں کلیئر سائن، ٹھیک ہے، کلیئر آیت، قدرت، ٹھیک ہے، کوئی ایسی نشانی. تو اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں ذکر نہیں کیا، محذوف رکھا اس بات کو. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ایسے ہی ہم نے پھیر دیا. صرف، صرف کرنا ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھرنا، پھیرنا، چینج. اسی وجہ سے جو آپ پیسے دیتے ہیں کیش کاؤنٹر کے اوپر، اگر کیش دیتے ہیں تو واپس میں جو چینج ملتا ہے نا، اس کو یہ کہتے ہیں صرف، فی صرف، رائٹ، چینج نہیں ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ چینج واپس کرتے ہیں، ریزگاری جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں. عنہ السوء والفحشاء، تو اسی طریقے سے ہم پھیر دیتے ہیں سوء کو، برائی کو، اور فحش، فحش چیزوں کو، یعنی بے حیائی والی بات کو. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی تفسیر ہم نے پیچھے پیج نمبر 48 کے آخر تک پڑھ لی تھی، لیکن اس میں ایک پوائنٹ تھا جو کہ پچھلی کلاس میں میں آجز چاہ رہا تھا بہت، لیکن وہ اٹک گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نا کہ زبان سے نکل نہیں پا رہا تھا اور وقت بھی ختم ہو گیا تھا. تو کوشش کرتے ہیں کہ اس دفعہ اس کے اوپر کچھ بات کر لی جائے. کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں، معارف و مسائل میں، لکھا کہ یہ مسئلہ عصمت کیا ہے کہ نبی سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، وہ معصوم، جیسے ایک بچہ معصوم ہوتا ہے نا کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، بچے کی معصومیت اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ بھائی اگر وہ کوئی برا کام کر بھی لے، جیسے اما کو تھپڑ مار دیا، یہ گناہ کا کام ہے، لیکن چونکہ وہ اتنا چھوٹا ہے تو وہ گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا ہی نہیں جائے گا، تو وہ گناہ ہوگا ہی نہیں. بے شک اس نے بہت بڑی بدتمیزی کا، بے ادبی کا، نافرمانی کا کام کیا، اپنی ماں کو تھپڑ لگا دیا، لیکن اس کے نام اعمال کے اندر یہ شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تک سلسلہ ہی شروع ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو وہ کر بھی دے تو بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کر بھی دے تو بھی نہیں ہوتا گناہ. تو جو انبیاء ہیں نا، ان کا یہ معاملہ نہیں کہ وہ کر دیں، وہ تو کرتے ہی نہیں ہے، وہ تو کرتے ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہے، معصوم بالخطا. تو مسئلہ عصمت یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں قرآن و سنت سے ثابت ہونے کے علاوہ عقلاً بھی اس لیے ضروری ہے कि अगर अंबिया अलैहिस्सलाम से गुनाह सरजद हो जाने का इम्कान व एहतमाल रहे तो उनके लाए हुए दीन और वही पर एतमाद का कोई रास्ता नहीं रहता, है ना। एक गुनाहगार के ऊपर तो फिर वैसा कामिल एतमाद तो हो ही नहीं सकता ना, झूठे के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और एक किरदार का जो खराब है, गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो भाई उसके ऊपर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो आपको अल्लाह के बारे में और फरिश्तों के बारे में और तकदीर के बारे में ऐसी ऐसी बातें जो कि इंसानी अकल में आ ही नहीं सकती, है ना। तकदीर की बात, फरिश्तों वाली बात, साइंस उठा के देखे ना किधर है फरिश्तों का जिक्र। साइंस के अंदर जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े शौक के साथ पढ़ाते हैं और पढ़ाने के लिए उनको अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, वहां पर क्या है, कहीं फरिश्तों का तस्करा है कि सारा काम जो है वो फरिश्तों से होता है। वो तो अल्लाह के नबी ने बताया, अल्लाह के नबी ने तो लगता है जन्नत की बातें बताई थी। फरिश्तों का ताल्लुक तो जन्नत के साथ है, फरिश्तों का ताल्लुक तो आलमुल अरवाह के साथ है, इस दुनिया के साथ फरिश्तों का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ऐसे ही है? क्या ख्याल है ईमान वाले हजरात, क्या फरिश्तों का ताल्लुक जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ है, इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ फरिश्तों का कोई ताल्लुक नहीं है? है कि नहीं है? इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई काम फरिश्ते नहीं करते? नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया सारा काम फरिश्ते करते हैं। आपकी साइंस क्या कहती है, राइट? जो साइंस जो है वो बड़े जौक शौक से पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी। हम ये नहीं कह रहे कि मत पढ़ाएं, हम ये कह रहे हैं फरिश्तों को तो लेकर के आए उसके अंदर। फरिश्तों के बगैर ही आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि ये ऐसे हो जाता है, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हु कॉजेज दैट रिएक्शन, राइट? अल्लाह कॉजेज दैट रिएक्शन। सो वेयर आर द एंजल्स? एंजल्स किधर आ गए? एंजल्स की जरूरत क्या है फिर? अल्लाह कॉजेज ऑल द रिएक्शंस, है ना। दीनदार बनने के बाद अल्लाह, ठीक है ना, दीनदार बन गए तब अल्लाह, दीनदार नहीं थे तो फिर तो अल्लाह का भी जिक्र नहीं होता। जब दीनदार नहीं थे तो अल्लाह का भी जिक्र नहीं होता, दीनदार बनने के बाद, मौलवी साहब बनने के बाद तो अल्लाह का जिक्र बड़ी मुश्किल से एंटर होता है दुनिया के मामलात के अंदर। लेकिन ईमानियात के अंदर, ईमान के जो 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 पिलर्स हैं, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही, मलाइका किधर चले गए? बिल्कुल वैनिश। मलाइका का तस्करा फिजिकल वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल यानी मफकूद है। इससे शर्म आती है मौलवी साहब को। मौलवी साहब से मेरी मुराद उलमाए कराम नहीं है, मौलवी साहब से मुराद दीनदार, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, राइट, मस्जिद जाने वाले और बुरका पहनने वालियां। फरिश्ता और साइंस? नो 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 नो, ये तो दकियानूसी बात हो जाएगी, ये तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये तो लोग समझेंगे ये तो बिल्कुल ही जो है ना वो खलाई यानी ख्यालात में रहने वाले, तखयलात में रहने वाले लोग हैं, इनको तो फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो फरिश्तों को तो रखो उस काम के लिए, है ना, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के रोजे के ऊपर जो है फरिश्ते आकर के जो है वो सलाम पेश करते हैं। बस बस बस, इससे ज्यादा फरिश्तों को फ्री करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा फरिश्तों को दुनिया के मामलात में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के मामलात तो चलते हैं न्यूटन न्यूटन साहब के हिसाब से चलते हैं, आइंस्टाइन साहब के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। किधर गया हमारा ईमान? फरिश्तों के ऊपर ईमान नहीं, सारा ईमान खत्म, सारा ईमान खत्म। एक फरिश्तों के इनकार से कि नहीं फरिश्ते नहीं करते बल्कि ये सब खुद होता है, ईमान गया, खत्म हो गया। भाई आप किस किस मखमसे में हैं कि आप बड़े बड़े नेक दीनदार मुसलमान हैं, ठीक है। तकदीर के ऊपर ईमान खत्म, सब गया, सब गया। उसके बाद सारी नमाजें, सारे रोजे, सारे सदके, सारे खैरात, सारे हज, सारे उमरे, अगर एक तकदीर का इनकार कर दिया, सब कुछ गया। और तकदीर क्या है? एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिंड बाय अल्लाह, राइट, एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिंड बाय अल्लाह, ठीक है। तो भाई हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, जिसको फितने दज्जाल का दौर कहते हैं, ये दज्जाल साहब तो निकलेंगे आखिर में, लेकिन उनका जो असर है मुसलमानों के ऊपर, ईमान वालों के ऊपर, उनका असर तो 400 साल से जारी है, ठीक है ना। 400 साल से, जब से ये आपके याजूज माजूज का जो है ना ये तसल्लुत पूरी दुनिया के ऊपर हुआ है, यूरोपियंस का, ठीक है ना, यूरोपियंस का, रोमियो का तसल्लुत जब से हुआ है ना, ये फितना दज्जाल उस वक्त से चल रहा है, और मुसलमानों का ईमान उस वक्त से खत्म हो रहा है और हो चुका है, और हो मतलब सबका नहीं ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद का, बहुत बड़ी तादाद का, ठीक है। क्योंकि ईमान के तो बुनियादी जुज हैं ये, ईमान के तो बुनियादी जुज हैं ये, ठीक है ना। तो बहरहाल कुरान सुन्नत से इस्मत मसला इस्मत साबित होने के अलावा अकलन भी इसलिए जरूरी है। तो यानी उनकी बातों के ऊपर एतमाद का रास्ता नहीं रहता, अगर आपने उनको गुनाहगार समझना शुरू कर दिया और उनकी बेइज्जती तो उन पर किताब नाजिल करने का कोई फायदा बाकी नहीं रहता। व्हाट्स द यूज, ठीक है ना, कि वो किताब लेकर के आए, ठीक है, बेशक कि वो भाई नबी बनकर के आए, भाई नबी क्यों बनकर के आए, अल्लाह का बताने के लिए, अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है, वो भाई अल्लाह को तो वो पहले से जानते थे, अल्लाह का तो वो पहले से मानते थे, राइट। मुश्रिकी ने मक्का के अल्लाह को नहीं मानते थे, बैतुल्लाह का फिर वो क्यों तवाफ करते थे और बैतुल्लाह को क्यों उतनी हिफाजत करते थे और पानी क्यों पिलाते थे और हज के अय्याम के अंदर जो है वो अराफात क्यों जाते थे और मिना क्यों जाते थे, अल्लाह को तो वो पहले से मानते थे, ठीक है ना। और मुशरिकी और ये जो ये तो मुशरिकीन थे, ठीक है ना, वो जो अहले किताब थे यहूदी और यहूद और नसारा, वो अल्लाह को नहीं मानते थे। हैं, मेरे ख्याल में हमारे हमसे ज्यादा लगता है उनका ईमान अल्लाह की मौजूदगी के ऊपर हमसे ज्यादा था, क्योंकि वो बहुत दीनदार लोग थे, बहुत ज्यादा, ठीक है। तौरात और इंजील के अंदर जो उनके सारे के सारे वादे मौजूद थे, वो वादों का इल्म भी रखते थे और उनको बड़े यकीन के साथ जो है ना उनका इंतजार कर रहे थे आखिरी नबी के आने का, ठीक है। तो भाई फिर नबी अलैहिस्सलाम, नबियों की बेसत का मकसद अल्लाह से रूशनास कराना था, जैसे कि हम माशाल्लाह जब रूहानियत की बात करते हैं ना तो हम सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह से बंदा जो है ना वासिल हो जाए और अल्लाह से अल्लाह ताला को पहचान जाए, अल्लाह ताला का इरफान नसीब हो जाए, ठीक है। क्या ये मकसद था नबी अलैहिस्सलाम के आने का? तो ये तो इररेलीवेंट हो गया ना, यानी ये तो पहले से ऑलरेडी ये मौजूद था दुनिया के अंदर, तो भाई नबी अलैहिस्सलाम क्या लेकर के आए थे? जी आप बताते हैं ना, क्या लेकर के आए थे नबी अलैहिस्सलाम, क्यों आए थे इस दुनिया के अंदर? अल्लाह से रूशनास कराने के लिए आए थे, वो तो पहले से हुआ हुआ था। ये तो इसको रिडंडेंसी कहते हैं, नाउज बिल्ला, नबी अलैहिस्सलाम वॉज रिडंडेंट नेमत ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला, रिडंडेंट। जवाब आप हजरात से, शिर्क से रोकने के लिए आए थे। अच्छा जी, और क्या करने आए थे? शिर्क से रोकने के लिए आए थे, तो फिर क्यों रोकने के लिए आए थे शिर्क से? और जवाब देना जरा अकल वाला इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह से तबलीग, तालीम, तस्किया अल्लाह से जो जुड़ने का सही तरीका बताने के लिए आए थे, सही तरीका बताने के लिए आए थे, और गलत तरीका उसको यानी एब्रोगेट करने के लिए आए थे, उसको जो है वो खत्म करने के लिए आए थे, जिसको कि आप शिर्क कह रहे हैं। शिर्क क्या है, ठीक है ना, अल्लाह ताला को मनाने का गलत तरीका, ये शिर्क है, ठीक है ना। और अल्लाह ताला को मनाने का सही तरीका क्या है? है? सही तरीका, वो एक बचपन में कोई ड्रामा श्रामा होता था, सही तरीका, ठीक है ना, वो तौहीद है, ठीक है ना। और तौहीद के बाद फिर 5 नमाजें, ठीक है ना, और उसके बाद फिर 2.5% ज़कात, और उसके बाद फिर 30 रमजान मुबारक के 30 रोजे, और उसके बाद फिर हज, जिंदगी में एक दफा हज करना, ठीक है ना। और उसके बाद फिर, और उसके बाद से मुराद खाली ये नहीं कि जी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, बल्कि यानी ऑल ऑफ दीज आर, ठीक है ना, झूठ से बचना, ठीक है ना, झूठ बोल करके अल्लाह ताला को नहीं आप पा सकते, धोखा दे करके अल्लाह ताला को नहीं पा सकते, जुल्म करके अल्लाह ताला को नहीं पा सकते, जुल्म से बचोगे अल्लाह ताला फिर मिलेगा, धोखे से बचोगे अल्लाह ताला फिर मिलेगा, गीबत से बचोगे फिर अल्लाह ताला मिलेगा। तो नबी का काम क्या था, नबी की क्या रेलिवेंस थी इस दुनिया के अंदर, क्या सिग्निफिकेंस थी इस दुनिया के अंदर? तरीका बताना, तरीका, डिटेल्स, तरीका बताना, जिसको शरीयत कहते हैं, जिसको शरीयत कहते हैं, ठीक है। तो जब आप, अच्छा किसी को इख्तलाफ हो इसके ऊपर तो प्लीज प्लीज एनलाइटन मी, राइट। तो भाई ये जिन लोगों को नबी अलैहिस्सलाम ने आकर के डायरेक्टली डील किया ना, यहूद से, नसारा से और मुशरिकीन मक्का से, ठीक है ना, बाकी जो पेगन्स थे, जिसको के जिनको पेगन्स कहते हैं, जिन्होंने के अपने मूर्तियों को जो है वो उन्हीं को खुदा बना लिया था और उनका खुदा से जो है वो यानी अल्लाह ताला को वो कुछ नहीं मानते थे, जैसे कि फिरौन के मानने वाले, ठीक है ना। फिरौन ने क्या कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही हूं सबसे बड़ा रब, अल्लाह अल्लाह कोई नहीं है, कोई चीज नहीं होती अल्लाह, ठीक है ना। तो ये पेगन्स कहलाते थे, ठीक है ना, ये मक्का मुकरमा वाले ये पेगन्स नहीं थे, ठीक है, जो अंग्रेजी में जिनको पेगन्स कहते हैं, ठीक है, ये लोग तो अल्लाह को मानते थे, वही एक परवरदिगार जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, जो मूसा अलैहिस्सलाम का है, जो ईसा अलैहिस्सलाम का है, जो नूह अलैहिस्सलाम का है, और हूद अलैहिस्सलाम का, और सालेह अलैहिस्सलाम का, वही एक अल्लाह, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो इन लोगों से आकर के डील किया, तो इन लोगों के पास नबी अलैहिस्सलाम क्या लेकर के आए, तरीका लेकर के आए, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबिया आए हुए थे, ठीक है ना, शुरू के चंद अंबिया को छोड़ करके बाकी जितने भी अंबिया नबी अलैहिस्सलाम से पहले आए थे, उनका ताल्लुक किस कौम से था, ठीक है ना, वो बनी इसराइल के अंबिया कहलाते हैं, ठीक है ना, बनी इसराइल के अंबिया। तो बनी इसराइल वालों ने अपने नबियों के साथ क्या किया, ठीक है, उन्होंने अपने नबियों के साथ ये किया जो कि यहां पे लिखा हुआ है, कि उन्होंने मसले इस्मत को जो है ना वो तार तार कर दिया, इस्मत के मसले को, कि उन्होंने नबियों के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, गुनाह के इल्जाम, ठीक है ना, नबियों को जो है ना उन्होंने नजासत के अंदर, गुनाह के अंदर छूटा मुलव्वस करने की कोशिश करी। मूसा अलैहिस्सलाम को भी इसी तरीके से, दाऊद अलैहिस्सलाम का तो मशहूर है कि उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर कैसी कैसी तोहमतें लगाई, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर तोहमतें मशहूर हैं इनके, है ना, बड़ी यानी वेल नोन है ये तोहमतें, ठीक है। और उसके अलावा भी अंबिया के, अब सारे सारी डिटेल्स हमारे पास नहीं है ना, लेकिन कुछ इशारात हमें मिल जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि उन्होंने, और नबी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इनका जिक्र कर दिया कि ये तो नबियों को जो है वो ऐसे ऐसे करते थे, और उनको कत्ल भी कर दिया करते थे, और उनके दुश्मनी इनके अंदर ये बहुत आगे थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना वो यही किया कि नबी के दुनिया में आने का जो मकसद होता है वो तरीका बताना होता है। जब नबी की रेप्यूटेशन को आप टार कर दें, नबी की रेप्यूटेशन को अगर आप टार कर दें, यानी गंदा कर दें, बुरा बना दें, गुनाह के अंदर उसको किसी तरीके से मुलव्वस करार दे करके, वो होते तो मुलव्वस कर तो नहीं सकते नबी को, लेकिन करार दे करके लोगों के सामने कि ये तो गुनाह गुनाह के अंदर थे, तो इससे क्या होता है कि लोगों के दिलों में ना नबी की वो रिस्पेक्ट, वो सिग्निफिकेंस नहीं रहती कि जिसकी बुनियाद पर वो नबी की जो गैब की दी हुई खबरें थी उनके ऊपर बिल्कुल यानी आंख बंद करके एतमाद कर सकें, वो आंख बंद करके अब एतमाद नहीं कर सकते भाई, ये तो गुनाह के, फलाने तो पता नहीं किसकी बीवी के साथ ये कर दिया था, फलाने फलाने को कत्ल, नाजायज कत्ल कर दिया था, फलाने ने इस मौके के ऊपर झूठ बोल दिया था, और फलाने उस मौके के ऊपर ये कर दिया था, तो भाई इनकी फिर हम कैसे आंख बंद करके इनकी बात के ऊपर ईमान लेकर के आ जाएं, ठीक है ना। तो बनी इसराइल ने अपने अंबिया के साथ क्या किया, उनकी रेपुटेशन को गंदा कर दिया। अब आप ये बताएं कि बनी इसराइल के अंबिया में से एक नबी है कि जिनकी रेपुटेशन को वो इस तरह से गंदा नहीं कर सके, उसको गुनाह में नहीं इन्वॉल्व कर सके, वो कौन से नबी जिसको के वो गुनाह में इन्वॉल्व नहीं कर सके कि इन्होंने फलाना गुनाह किया, उन्होंने फलाना गुनाह किया, जी कौन से वो नबी जो बनी इसराइल की नस्ल में आए, जो के मशहूर तरीन नबियों में से हैं, कौन है भाई, मूसा अलैहि सलाम। मूसा अलैहि सलाम के बाद अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई है ना, कि भाई ये मूसा जो है ना वो वजीहा वजी हैं, और तुम उनके ऊपर, मूसा अलैहि सलाम को तो उन्होंने बहुत घसीटा और लपेटा है, राइट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बनी इसराइल में से थे, क्या हो गया भाई, मूसा अलैहि सलाम तो बनी इस्माइल में से थे, ईसा अलैहि सलाम, एग्जैक्टली ईसा अलैहि सलाम, उनको इन्होंने ये कर नहीं सके गुनाह के अंदर, ठीक है। तो ईसा अलैहि सलाम के साथ फिर उन्होंने क्या किया, उनको वो गिरा नहीं सके नबुवत के दर्जे से, तो फिर उन्होंने क्या किया, ईसा अलैहि सलाम को गिरा नहीं सके, तो उनको जो है वो नबुवत के दर्जे से ऊंचा उड़ाया, ऊपर उठाया, ठीक है ना, और ऊपर उठा करके क्या कर दिया, खुदा का बेटा बना दिया, यानी करार दे दिया खुदा का बेटा, यानी नीचे नहीं गिरा सके तो चलो नीचे नहीं गिरा सकते कोई बात नहीं, मसला तो किसी तरह से पूरा करना है ना, घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो ना निकालो, टेढ़ी उंगली से निकाल लो, इन्होंने ईसा अलैहि सलाम को खुदा का बेटा यानी इतना उठाया, इतना उठाया, इतना चढ़ाया कि ऊपर ही पहुंचा दिया, ठीक है। तो जब खुदा का बेटा पहुंचा दिया तो फिर ईसा अलैहि सलाम का जो, अच्छा ईसा अलैहि सलाम में जो है ना एक 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 बड़ी खास बात है, ठीक है, आपने सुना होगा, आप में से अक्सर ने सुना होगा इंशाल्लाह, कि हम अपने मशाइख से सुनते हैं कि जी उलमा और मशाइख, उलमा और मशाइख, ठीक है ना? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उलमा एंड मशाइख? उलमा की क्या रोल होता है और मशाइख का क्या रोल होता है? अगर आप बहुत ही यानी हाई लेवल के ऊपर इनको डिफाइन करें, उलमा का क्या रोल होता है और मशाइख का क्या रोल होता है, तो क्या होगा? तालीम व तस्किया, ठीक है? उलमा का काम जो है वो तालीम होता है और मशाइख का काम जो है वो तस्किया होता है, ठीक है? तो तालीम किस चीज़ की देते हैं और ये तस्किया जो है वो तस्किया क्यों करते हैं, क्या क्या फ़ायदा होता है तस्किया करने का, ठीक है? तालीम का ताल्लुक इल्म से है, और इल्म जो है ना वो उसकी वो एक तरीके का डिटेल्स होती हैं उसके अंदर, उसके अंदर जो है ना फिर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है ना? जिसको कि आप फिका कहते हैं, या उसको आप यानी है ना तरीका, ठीक है? ये ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करना, इसको जाहिरी उलूम भी कहते हैं, ठीक है ना? शरीयत उलमा बताते हैं और तरीकत मशाइख सिखाते हैं, ठीक है ना? तो तरीकत क्या चीज है? तरीकत का ताल्लुक जो है वो जिसको कहते हैं जी रूहानियत है, रूहानियत, राइट? इसके अंदर कैफियात होती हैं, ये वो जो है ना वो आपको जाहिरी दीन पढ़ा रहे होते हैं, और ये जो है ना वो कैफियात दीन के मुहाफिज होते हैं, और कैफियात दीन जो है वो आगे मुंतकिल कर रहे होते हैं दिलों से दिलों के अंदर, कैफियात दीन है ना, नबी अलैहिस्सलाम की कैफियात को इन्होंने महफूज किया अपने अंदर और आगे उम्मत के अंदर फैलाया। और उलमा ने क्या किया? उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को महफूज किया और उसको आगे फैलाया, ठीक है? तो बनी इसराइल के जब आप अंबिया को देखते हैं तो उलमा की कैटेगरी के अंदर कौन आते हैं? मशहूर उलमा में से उलुल अजम, वो सॉरी मशहूर अंबिया में से, बनी इसराइल के जो उलुल अजम अंबिया हैं उनमें से उलमा की कैटेगरी में कौन आते हैं, रूहानियत की कैटेगरी में कौन आते हैं, ठीक है? उलुल अजम अंबिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है? आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है? तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना ये उलमा की कैटेगरी में से आते हैं, ये शरीयत ये रूल्स लेकर के आए, ठीक है? तौरात जो है ये रूल्स की किताब के तौर पे मशहूर है, पहचानी जाती है, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना ये इंजील लेकर के आए। इंजील जो है ना वो कई वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लेकर के आए, उसके अंदर जो है वो नूरानियत नहीं, रूहानियत, ठीक है ना? उसके अंदर रूहानियत थी, ठीक है ना? तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना ये रूहानियत के दुनिया के चैंपियन समझे जाते हैं, हत्ता के आखिर में भी ये रूहानियत के तौर पर दुनिया के अंदर वापस लाए लाए जाएंगे, ठीक है? और मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना ये वो शरीयत के पहलवान या शरीयत के जो है वो चीफ माने जाते हैं, ठीक है, बनी इसराइल के अंबिया के दरमियान, ठीक है? तो जो रूहानियत की दुनिया के सबसे बड़े थे उनको इन्होंने क्या किया, उनको नीचे नहीं गिरा सके, उनको इन्होंने क्या किया, ऊपर चढ़ाया, खुदा के दर्जे तक पहुंचा दिया। और जो बाकी शरीयत के बातें करने वाले थे और शरीयत के राइट दाऊद अलैहिस्सलाम भी जो है वो भी जबूर, खैर वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ही को ज्यादातर, ठीक है? तो उनको जो है ना इन्होंने यानी उनकी रेपुटेशन को टार करने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की। तो इससे क्या होता है कि जब उलमा के रेपुटेशन को आप खराब कर देते हैं ना तो फिर वो लोग जो है ना फिर उनसे तरीका नहीं सीखते, क्योंकि वो तो तरीके वाले लोग होते हैं ना कि अल्लाह को कैसे राजी करना है, ठीक है ना? अल्लाह को राजी करने के लिए कौन से आमाल करने हैं, कैसे वो आमाल करने हैं और किन आमाल से बचना है, ठीक है, ये वाली डिटेल्स होती हैं। तो उलमा की रेपुटेशन को टार करते हैं, और जो रूहानियत की दुनिया के बड़े होते हैं उनको ऊपर चढ़ाते हैं, उनको ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है ना? जिसको के आज के दौर में जिनको मशाइख कहा जाता है, मशाइख कहा जाता है, एग्जैक्टली पढ़ा सबने जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, राइट? सेम वे दिस इज बीइंग डन दीज डेज, एग्जैक्टली यही काम जो बनी इसराइल में हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, तुम वही करोगे जो बनी इसराइल ने किया, हत्ता कि वो किसी लिजर्ड होल में भी घुसे थे ना तो तुम भी उस लिजर्ड होल में घुसोगे, उनमें से किसी ना अपने ने अपनी माँ के साथ जिना किया था ना तुम भी अपनी माँ के साथ जिना करोगे, राइट? उलमा आर बीइंग टार्निश्ड, And mashayikh are being elevated. मशाइख आर बीइंग एलिवेटेड, बहुत ऊंचा चढ़ाना। अब ये इसमें मशाइख का कसूर है कि उनको जो है वो आप एलिवेट कर रहे हैं, या उलमा का कसूर है कि आप उनको टार्निश कर रहे हैं? भाई उलमाए हक जो हैं वो तो उलमाए हक ही रहेंगे, अगर वो हक का काम करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे वो उलमाए हक ही रहेंगे। लोग उनको टार्निश कर रहे हैं या शयातीन उनको टार्निश कर रहे हैं, तो भाई ये उलमा का कसूर नहीं है कि लोग उनको टार्निश कर रहे हैं, ये तो शयातीन का काम है करने का, वो काम अपना कर रहे हैं। और मशाइख को अगर एलिवेट कर रहे हैं, उनको खुदा के दर्जे तक पहुंचा रहे हैं, या उनको नबी के दर्जे तक पहुंचा रहे हैं कि भाई अब ये कोई नई शरीयत लेकर के आए हैं, है ना, ये कोई नई शरीयत लेकर, जैसे नबी जो है वो शरीयत लेकर के आते हैं ना, पहले नबी जो है वो एक शरीयत लेकर के आए थे, अब अगला नबी जो है वो कुछ थोड़ी सी तब्दीली के साथ एक नई शरीयत लेकर के आता है, यानी नई तरीक नया तरीका लेकर के आता है, ठीक है ना। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दो नमाजें थी, नबी अलैहिस्सलाम नई शरीयत लेकर के आए, पांच नमाजें हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक तस्वीरें मना नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो नई शरीयत लेकर के आए जिसमें तस्वीरें हराम थी, है ठीक है नहीं थी, ठीक है। तो भाई इसमें ईसा अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने खुदा बनाया, खुदा का बेटा बनाया, राइट, साले सुन बिन सलास, यानी एक में तीन में से तीसरा बनाया, तो ईसा अलैहिस्सलाम का ये कसूर है, ईसा अलैहिस्सलाम का कसूर है कि आपको क्यों बना लिया लोगों ने, नहीं आपको नहीं, उनको रोक देना चाहिए था आपको, उनको आपको जो है ना वो इनके रास्ते में रुकावट पैदा करने देनी चाहिए थी, आपको ये कर देना चाहिए था, आपको वो कर देना चाहिए था। भाई ईसा अलैहिस्सलाम का तो ये कसूर नहीं है ना, ये तो करने वालों का कसूर है, ठीक है ना। बिल्कुल ये आज भी हो रहा है, उलमाए हक भी हैं, मशाइख हक भी हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो उनकी जो रेपुटेशन को खराब करने के चक्करों में लगे हुए हैं, चाहे वो जानबूझ के करें, चाहे वो बेवकूफी में करें, लेकिन कर रहे हैं। उसी तरीके से मशाइख के इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो उनको चढ़ाने में लगे हुए हैं, फुल टाइम लगे हुए हैं, फुल टाइम लगे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत ही जोर और शोर के साथ लगे हुए हैं, चाहे वो जानबूझ के लगे हुए हों किसी अल्टीरियर मोटिव की वजह से, चाहे वो बेवकूफी में लगे हुए हों, मोहब्बत शेख और अकीदत शेख और शेख क्या कहते हैं उसको, फिनाफ शेख, राइट, ओ भाई अल्लाह के बंदे, फिनाफ शेख में शरीयत किधर चली गई, शरीयत के तहत फिनाफ शेख होता है, फिनाफ शेख की जरूरत है ताकि तुम्हारा नफ्स मिटे, नफ्स जो है वो उस वक्त तक मिट नहीं सकता जब तक तुम फिनाफ शेख ना करो, लेकिन खुदा के बंदे फिनाफ शेख के अंदर फिनाफ यानी फिनाए शरीयत के मुर्तकिब तो मत हो ना, शरीयत की फिना के मुर्तकिब तो मत हो ना तुम, ये तुमने किधर से निकाल लिया कि तुम जो है वो शरीयत को फिना करके जो है फिनाफ शेख हो जाओगे। बात समझ में आ रही है, कोई एतराज, कोई सवाल, कोई इश्काल तो प्लीज कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों रास्ते होते हैं, इस रास्ते की वजह से जो है ना फिर होता क्या है कि जब ये दोनों काम होते हैं ना, तो इससे जो है ना वो लोग, ये नहीं होता कि अल्लाह ताला पिक्चर में से निकल जाता है, नहीं, अल्लाह ताला शुरू में नहीं निकलता, अल्लाह ताला तो पिक्चर में ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन दीन के अंदर क्या होता है, दीन के अंदर इल्हाद शुरू हो जाता है, इल्हाद, ठीक है ना। और इस जमाने का जो फितना है ना, इस वक्त का फितना, ये एथियज्म नहीं है, बहुत सारे लोग जो है ना वो एथियस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, लिबरल्स के पीछे पड़े हैं, जिनको ये कहते हैं एथियस्ट हैं, उनसे जो है वो डायलॉग हो रहे हैं, उनसे जो है ना वो बहसें हो रही हैं एथियस्ट लोगों से, और एथियस्ट लोगों से बहस करने के चक्कर में दीन का इलाज, दीन का हुलिया बिगाड़ दिया, क्योंकि एथियस्ट जो जो बहस करते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो सारे दीनदार एक तरीके से बैठा हुआ होता है, तो दीनदार कौन होते हैं, शिया भी उसमें बैठा होगा, बरेलवी शिया भी उसके अंदर बैठा हुआ होगा, उसके अंदर जो है वो देवबंदी भी बैठा हुआ होगा, उसके अंदर जो है वो अहले हदीस भी बैठा हुआ होगा, है ना, और सब मिल करके जो है ना वो एथियस्ट आपके ऊपर हथौड़े बरसा रहे हैं, ठीक है ना। और एथियस्ट ने क्या करना है भाई, उसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, वो तो आय माय शाय कर रहा होता है, लेकिन इसका असर देखने वालों के ऊपर क्या हो रहा होता है, जो इस डायलॉग को, इस डिबेट को ऑनलाइन देख रहे हैं आपकी, है ना, वो क्या देख रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई शिया भी तो अहले हक की तरफ हो गए ना, फिर इसका मतलब है जो राफिजी हैं, जो सहाबा कराम के लिए मुगलजात बकने वाले लोग हैं, वो भी अहले हक में से हुए हैं, जो बिदती हैं, जिन्होंने दीन को जो है वो हुलिया बिगाड़ करके बिदतों को जो है वो दीन के अंदर शामिल कर लिया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने बिदती की इज्जत करी, उसने दीन की इमारत को ढाने में मदद करी,
दीन की इमारत को ढाने में उसने मदद करी है, तो बिदती भी अहले हक में से हो गया। क्या ख्याल है आपका, गलत कह रहा हूं? आपके और मेरे जैसा कोई बंदा जब इस डिबेट को देखता है जिसमें एक तरफ एथियस्ट है और दूसरी तरफ ये सारे के सारे बैठे हुए हैं मौलवी हजरात, तो वो तो सारे अहले हक में से हो गए ना फिर। जो अहले हदीस है, जो कि तकलीद का मुनकर है, जो कि अकाबिर उलमाए कलाम का मुनकर है, जो कि मशायख का मुनकर है, जो कि करामात करामत का मुनकर है, ना जाने किस किस चीज का मुनकर होता है वो गैर मुकल्लद इंसान, वो भी अहले हक में से हो गया क्योंकि वो भी देवबंदी के बराबर में बैठा हुआ है ना। शिया भी देवबंदी के बराबर में बैठा हुआ है, बिदती भी देवबंदी के बराबर बैठा है, तो ऐसे देवबंदी को क्या कहना चाहिए भाई, इसको देवबंदी कहेंगे या कुछ और कहेंगे? तो ये इल्हाद, इसको इल्हाद कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, दीन का जो तरीका नबी अलैहिस्सलाम ने बवास्ता सहाबे कराम इस उम्मत को सिखाया था, वो तरीका खलत मलत हो जाता है, उसका हुलिया बिगड़ जाता है उस तरीके का, इसको कहते हैं इल्हाद। इस दौर का जो फितना है ना, जो कि दज्जाल का फितना है, ये एथियज्म नहीं है। एथियज्म इज नॉट द फितना ऑफ टुडे, इस दौर का फितना इल्हाद है, ठीक है ना। तो दज्जालियत को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दज्जाल वाले लोग हैं ना, ये किस चीज के लिए दज्जालियत को, धोखे को, फरेब को, डिसेप्शन को, किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एथियज्म के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं धोखे को, ये इस्तेमाल कर रहे हैं इल्हाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें तो इतना नहीं पता कि एथियज्म को इल्हाद नहीं कहा जाता, हम तो एथियज्म का ट्रांसलेशन ही इल्हाद से कर देते हैं। भाई एथियज्म का ट्रांसलेशन दहरियत बनता है, दहरिया, ठीक है। इल्हाद का ट्रांसलेशन एथियज्म नहीं है, ठीक है। मुल्हिद जो होता है ना, ये अल्लाह का इनकार करने वाला नहीं होता, ठीक है ना। क्लासिकली स्पीकिंग यहूदी भी मुल्हिद है, ईसाई भी मुल्हिद है, और ये जो मुशरिकीन मक्का थे ये भी मुल्हिद थे, मुशरिक तो थे ही, मुशरिक तो ईसाई भी होता है, लेकिन एथियज्म और मुल्हिद में से ये कौन से थे? ये एथियस नहीं थे, ये अल्लाह को मानते थे। एथियस तो अल्लाह को ये कहीं इनकार करता है, वो तो डार्विन थ्योरी वाला होता है खाली एथियस। या जो पेगन्स होते हैं, जो कि फिरौन को खुदा मानते हैं, बस वाहिद खुदा उसी को मानते हैं, या जो है वो किसरा को खुदा मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का किसरा से भी बहुत थोड़ा सा वास्ता रहा, ठीक है, तो वो पेगन्स होते हैं। बाकी सारे लोग जो होते हैं वो तो दीनदार लोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब का सब जो है ना, ये इल्हाद का चक्कर है, और ये डिसेप्शन को, दजल को इस दौर के अंदर इल्हाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे लोगों को मुल्हिद बनाया जाए, ठीक है। तो किसको मुल्हिद बनाया जा रहा है इस दौर के अंदर? इस दौर में ईसाई को मुल्हिद नहीं बनाया जा रहा, भाई ईसाई पहले से मुल्हिद है, उसको मुल्हिद को थोड़ी बनाने के ऊपर दजालियत का जोर है। दजालियत का जो फितना है, फितना है दज्जाल जो है, ये ईसाई, ईसा को मुल्हिद बनाने के लिए, ईसाई सॉरी ईसाई को मुल्हिद बनाने के लिए है, ये यहूदी को मुल्हिद बनाने के लिए, खुदा के बंदे ये तो पहले से, ये तो पहले से मुल्हिद है ना, हिंदू ये तो पहले से मुल्हिद है, ठीक है ना। तो किसको मुल्हिद बनाने के लिए दज्जालियत को इस्तेमाल किया जा रहा है? ये अहले सुन्ना वल जमात में जो लोग बच गए हैं, अहले सुन्ना वल जमात यानी जो सहाबा कराम से दीन लेते हैं, जमात से क्या मुराद है? सहाबा कराम मुराद है, उन लोगों को इल्हाद का शिकार करने के लिए दज्जालियत को एम्प्लॉय किया जा रहा है, धोखे को एम्प्लॉय किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए कौन से रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं? उलमा को टार्निश करो और मशायख को चढ़ाओ, ऊपर चढ़ाओ, ठीक है ना, ताकि ये शरीयत वरियत जो है ना ये खत्म हो जाए। जो पीर साहब से मंसूब कर दिया, पीर साहब ने खुद कुछ नहीं कहा लेकिन पीर साहब से मंसूब कर दिया, वही शरीयत बन जाएगी, वही खुदा का दीन बन जाएगा, जो पीर साहब ने कह दिया वही खुदा का दीन बन जाएगा, बस, क्योंकि पीर साहब हैं ही इतने, सब कुछ है उनके पास, ठीक है ना। वो किधर चला गया कि तरीकत जो है वो शरीयत की लौंडी है, शरीयत तरीकत की लौंडी नहीं है, क्या ख्याल है आपका, है? इसको तब्दील कर दिया आज के दौर में, तरीकत को शरीयत की लौंडी बना दिया या शरीयत को तरीकत की लौंडी बना दिया? आज तो ऐसे ही लगता है कि शरीयत को तरीकत की लौंडी बनाना, इसके ऊपर भरपूर मेहनत हो रही है, ठीक है ना। लौंडी साहिबा नीचे होती हैं या मास्टर साहिबा साहिब नीचे होते हैं?
ठीक है, क्या ख्याल है भाई? तो फितने दज्जाल जो है ना, ये हम समझ रहे हैं यहूदी जो है वो फितने दज्जाल, वो भाई यहूदी दज्जाल जो होगा वो यहूदियों में से होगा, ठीक है ना? दज्जाल जो है वो यहूदियों में से होगा, और दज्जाल का खात्मा किधर होगा? यहूदियों के इलाके में, जो यहूदियों के पास होगा जो इलाका, ठीक है ना? वो भागेगा वहां पे जाकर के, पता नहीं स्पेस स्टेशन में जाने के लिए वो वहां भागेगा, वहां पे एक एयर स्टेशन तो है वहां पे, ठीक है ना? वहां तो खात्मा होगा दज्जाल का। दज्जाल की इब्तिदा किधर होगी भाई? जुहूर किधर होगा? 55 हजरात और खवातीन। दज्जाल का खात्मा तो उधर होगा जाकर के, जहां को हम समझ रहे हैं कि दज्जाल वहां से पैदा होगा। अजीब है ना, दज्जाल का जुहूर किधर होगा? दज्जाल का जुहूर तो इस्फहान में होगा, उधर नहीं होगा जिधर हम समझ रहे हैं। भाई हदीस मुबारक से हमें बातों को लेना है कि हमने अपनी अकल और अपने मुशाहदे और अपने खबरों, न्यूज स्टेशन और यूट्यूब वीडियोस और टिकटॉक वीडियोस, उनके जरिए से हमने हकीकत को समझना है, कुरान और हदीस से नहीं समझना, ठीक है? तो हदीस के अंदर तो भाई वहां का जिक्र नहीं है, हदीस के अंदर तो कहीं और का जिक्र है। तो भाई जो खुला काफिर है वो कैसे आपको डिसीव करेगा? मैं मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आपको समझ में आता है? जो खुला काफिर है उससे कैसे डिसेप्शन होगी कि नहीं ये असल में हक पर है, और जो है ना वो ये असल में तो दीन जो है वो यहूदियत है, इस्लाम जो है वो तो यहूदियत है, क्या ख्याल है? इसको दजल कहते हैं। तो भाई जिसको आप दीन समझते हैं हालांकि वो दीन नहीं है, इसको धोखा कहते हैं ना, इसको दजल कहते हैं ना, क्या ख्याल है? उल्टा मामला है, जिसके बारे में आपको पता है कि ये इस्लाम नहीं है, तो उसमें आपको कैसे धोखा हो सकता है कि ये इस्लाम है, ठीक है ना? लेकिन जिसको आपको समझाया जाए कि नहीं नहीं यही इस्लाम है, और आप भी जो है वो हम नवा, और आप जो है आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सब कुछ सही है ना, ये तो खाम खा के है ना, चंद दकियानूसी मौलवियों को जो है ना, ये तो उनको इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन अच्छा नहीं लगता, इस वजह से सारे के सारे जो है वो, और बस। तो भाई आप ठीक है, अपनी अपना दीन बनाए, पर अपनी हदीसें आप खुद ही ईजाद करें, ठीक है ना? या आप हदीसों का इनकार कर दें, ठीक है ना, कि भाई हदीसें तो कुछ होती ही नहीं है, मैं तो अपनी अकल से ही फैसला करूंगा क्या सच है और क्या गलत है, ठीक है? तो फितने दज्जाल जो है ना, इसको अल्लाह ताला से पनाह मांगे कि अल्लाह आप फितने दज्जाल से मेरी और मेरे आलो औलाद की, मेरे दोस्त अहबाब की सबकी हिफाजत फरमाए। इतना आसान नहीं है फितने दज्जाल को समझना, ठीक है? यूट्यूब से नहीं समझ में आता है फितने दज्जाल, कम अज कम। सही, आगे चलें। तो तफसीर कुर्तुबी में लफ्ज हम्मा का इन दोनों माने के लिए इस्तेमाल है, के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल अरब के मुहावरात और अशआर की शहादतों से साबित किया है, ठीक है? लफ्ज हम्मा का इन दोनों माने के लिए इस्तेमाल, यानी एक इस्तेमाल जो है वो कि किसी के दिल के अंदर गुनाह का कसद और इरादा आ गया, ये भी इसका मतलब है अरबी जुबान के अंदर, और ये भी इसका मतलब है कि बस वसवसा आया और उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया। वो कहते हैं कि ऐसे मालूम हुआ कि अगरचे आयत में लफ्ज हम्मा जुलैखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों के लिए बोला गया है, मगर इन दोनों के हम्मा यानी ख्याल में बड़ा फर्क है, पहला गुनाह में दाखिल है और दूसरा गैर इख्तियारी वसवसे की हैसियत रखता है जो गुनाह में दाखिल नहीं है, ठीक है? गैर इख्तियारी वसवसा तो किसी को भी आ सकता है, हत्ता कि अल्लाह के वली को भी आ सकता है, ठीक है ना? विलायत सुग्रा वाले को भी आ सकता है, विलायत कुबरा वाले को भी आ सकता है, और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ा वली कौन हो सकता है भाई, वो तो नबी थे, ठीक है ना? तो वसवसा तो नबी को भी आया, ठीक है, लेकिन वसवसा तो गुनाह होता ही नहीं है, ठीक है? तो पहला गुनाह में दाखिल है और दूसरा गैर इख्तियारी वसवसे की हैसियत रखता है जो गुनाह में दाखिल नहीं है। कुरान करीम का असलूब बयान भी खुद इस पर शाहिद है, क्योंकि दोनों का हम व ख्याल अगर एक ही तरह का होता तो इस जगह बसीगा तस्निया वलकद हम्मा कह दिया जाता। हम्मा ये ड्यूअल टेंस है कि उन दोनों ने ताकीदन, लकद लाम ताकीद के लिए और कद ताकीद के लिए, ताकीदन उन दोनों ने कसद किया एक दूसरे का, लकद हम्मा, ठीक है? जो मुख्तसर भी था, और कुरान मजीद तो है ही इख्तिसार, कितना कुरान मजीद में इजमाल है, इख्तिसार है, बच्चा बच्चा याद कर लेता है,
ठीक है ना। तो इसी तरह से तो अल्फाज को कम कम कर करके ही तो इख्तिसार होता है ना। तो अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? ऐसी खामखा नहीं किया, नहीं खामखा तो अल्लाह ताला कोई काम नहीं करते। ठीक है, तो लकद हम्मा कह दिया जाता जो मुख्तसर भी था, उसको छोड़कर दोनों के हम व ख्याल का बयान अलग अलग फरमाया। हम्मत भी ही व हम्मा भी हा, और जुलेखा के हम व ख्याल के साथ ताकीद के अल्फाज लकद का इजाफा किया। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे मशाइख को, हमारे उलमाए कराम को बेहतरीन जजाए खैर अता फरमाए। कितनी डिटेल में और कितना बारीक बीनी के साथ उन्होंने बातों को समझा और हमारे सामने खोला। ठीक है ना, ये तफसीलात जो हैं ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में थोड़ी मिलती हैं। ठीक है ना, वरना हदीस तो नकल कर देते यहाँ पे कि भाई नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। ये तो इन उलमाए कराम को अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि उन्होंने अरबी जुबान का इतना तफसीली इल्म हासिल किया, और फिर उसके बाद खाली इल्म हासिल नहीं किया बल्कि उसको अप्लाई किया उस इल्म को, और ऐसी ऐसी गहराइयां फिर अल्लाह ताला ने इनके तकवा की वजह से उनके ऊपर खोली। ठीक है, तो जिससे मालूम होता है कि इस सॉरी हम्मो ख्याल के साथ ताकीद के अल्फाज का इजाफा किया। ठीक है, जुलेखा के हम के साथ ताकीद का लफ्ज है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हम के साथ लाम और कद की ताकीद नहीं है। गौर करें, वह लकद हम्मत भी ही, जुलेखा का जिक्र हो रहा है, वह हम्मा भी हा, लकद हम्मा भी हा नहीं फरमाया। ठीक है, जिससे मालूम होता है कि इस ताबीर खास के जरिए यही जतलाना है कि जुलेखा का हम किसी और तरह का था और यूसुफ अलैहिस्सलाम का हम दूसरी तरह का था। यानी वो हम जो है वो गुनाह वाला था, क्योंकि वो एक गैर नबी और है ना, एक आम सी औरत थी, और ये जो है वो अल्लाह के नबी थे। इनका हम वैसा वाला हम नहीं था जो कि उसका हम था, ये तो गैर इख्तियारी वसवसे वाला हम था। सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये इब्तिला पेश आया, तो फरिश्तों ने अल्लाह जल्ल शानहू से अर्ज की कि आपका ये मुखलिस बंदा गुनाह के ख्याल में है, हालांकि वो उसके वबाल को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंतजार करो, अगर वो ये गुनाह कर ले तो जैसा किया है वो उसके नाम अमाल में लिख दो, और अगर वो उसको छोड़ दे तो गुनाह की बजाय उसके नाम अमाल में नेकी दर्ज कर दो, क्योंकि उसने सिर्फ मेरे खौफ से अपनी ख्वाहिश को छोड़ा है, जो बहुत बड़ी नेकी है। यानी गुनाह का वसवसा आए, गुनाह के सारे असबाब आपके सामने मौजूद हो, फिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खौफ से इंसान उस गुनाह को छोड़ दे, ये तो बहुत बड़ी नेकी है। ठीक है ना, वाकया भी हमारे हजरत मशायख बयान फरमाते हैं अपने बयान के अंदर कि एक दफा एक बादशाह जो है ना, वो अपनी बीवी के साथ बड़े अच्छे मूड में था। वो बार बार अपने बेगम को जो है ना, वो प्यार प्यार की बातें कर रहे, और बेगम साहिबा का मूड ऑफ था उस वक्त। उन्होंने कहा, नहीं मैं तो तुम्हारे पास आऊंगी नहीं, मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। वो बिल्कुल ही इधर से इसरार उधर से इनकार। ठीक है ना, तो बहुत ही बुरी तरह से बेगम ने ना उसको झड़क दिया। तो इसको भी गुस्सा आ गया उस वक्त ना, मैं इतना इसको जो है वो, मैं बादशाह भी हूं और इतना उसको मैं कर रहा हूं उसके ऊपर मेहनत, और उसने ऐसे मुझे झड़क दिया। तो उसने कहा कि तुझे 3 तलाक है, अगर हाँ, उसने उसने कह दिया झड़क करके, आ वो जहन्नुमी, दूर हट जा मुझसे। ठीक है ना, तो इस बादशाह ने जवाब दिया कि अगर मैं जहन्नुमी हूं ना तो तुझे 3 तलाक है, अगर मैं जहन्नुमी हूं तो तुम्हें 3 तलाक है। ठीक है, तो अब जो है ना, वो कौन डिसाइड करे कि भाई ये जहन्नुमी है कि जन्नती है? तो सारे उलमा को बुलाया गया। उलमा ने भाई कहा, मुझे हमें क्या पता भाई, हम कैसे फतवा देते हैं कि तुम जहन्नुमी हो कि जन्नती हो, हमें तो इस बात का इल्म नहीं है। वो भी अच्छा जमाना था, वरना आज के वो उस तरह के जो दरबारी उलमा होते हैं वो तो फौरन फतवा देते हैं कि जी आप ही तो जन्नती हैं, और आपकी बात कौन से जन्नती हो सकता है। उन उलमा ने जो है ना वो इनकार कर दिया कि नहीं, हम ही नहीं बता सकते भाई, हम इतना बड़ा फतवा नहीं दे सकते, हमें अलग सामने जवाब देना है। बड़ा मसला हो गया, ओ हो बेगम साहिबा मलका मुअज्जमा को जाना, 3 तलाक हो गई, इसका मतलब है क्या करें। तो उतने में ना कोई आलम दीन थे, कोई कहता है इमाम शाफी थे, कोई कहता है इमाम अबू हनीफा थे, कोई 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 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी थे। तो वो अल्लाह वाले थे, वो आए, उन्होंने कहा जी मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा जी आप कौन होते हैं जन्नती और जहन्नमी का टिकट देने वाले? बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं मैं जवाब दूंगा, तो मुझे बस अकेले में बादशाह से बात करने दो। बादशाह से अकेले में बात करी, उन्होंने कहा कि जी बादशाह सलामत, आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया है कि जब कोई देखने वाला ना हो और आप सिर्फ अल्लाह की खशियत की वजह से गुनाह से रुके हो? ठीक है, तो बादशाह ने बड़ा सोचा, कौन सा ऐसा मौका, कौन सा मौका? हाँ, मेरी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया था कि जब मुझे एक अपने महल में काम करने वाली नौजवान लड़की के ऊपर दस्तरस हासिल हो गई थी, लेकिन उसने मुझे कहा, या मलक या मलिक इत्तकिल्ला, अल्लाह से डरो। तो कोई नहीं था जो मुझे रोक सकता, और मैं अगर उसके साथ जो करना चाहता कर सकता था, कोई मुझे सजा नहीं दे सकता था उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन सिर्फ इत्तकिल्लाह सुन करके मैंने उसको छोड़ दिया, जाने दिया, और अल्लाह ताला से मैंने तौबा कर ली, ठीक है। तो इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि मैं फतवा देता हूं कि ये जन्नती है, ये जहन्नुमी नहीं हो सकता। तो सारा शोर मच गया कि भाई ये कैसे, ये इनके पास कहाँ से ये खबर आ गई, मुस्तकबिल की खबर, आखिरत की खबर। उन्होंने कहा जी फतवा मैंने नहीं दिया, फतवा तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया है, ठीक है। और वो जो आयत है वो मुझे याद नहीं आ रही, अगर आप में से किसी को याद हो, इस जुबान पे आ नहीं रही, ठीक मकाम रब्बी फकत जन्नत ही अलमावा, है ना, फकत जन्नत ही अलमावा, कि जो अपने रब से वक़त खाफ मकाम रब्बी ही मकाम जन्न, क्या क्या है वो आयत, हाफिज साहब अगर आपने फरमा सके, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये जो काम किया ना, ये तो बहुत बड़ी नेकी का काम था, ठीक है। तो अब जो है वो वही बात के एक तो ये कि जो उलमा ने जो इतनी तहकीक से इतना जबरदस्त काम किया है कि इस्मत अंबिया को प्रूफ कर दिया कुरान मजीद के अल्फाज ही को इस्तेमाल करके, वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी फनहन नफ्स अन हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो जिन लोगों ने इस्मत अंबिया को टार्निश करने की कोशिश करी, जैसे कुछ लोगों ने बाकायदा तफसीर के अंदर फलाने नबी ने ये गलत काम किया, फलाने नबी ने ये गलत काम किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, है ना, मूसा अलैहि सलाम ने ये गलत काम किया, और यूसुफ अलैहि सलाम ने ये गलत काम किया, और जो है वो फलाने नबी ने ये गलत काम किया, ठीक है। तो अगर ये उलमा अल्लाह ताला की तौफीक से हमारे सामने ये इल्म की गहराइयां नहीं रखते, तो फिर तो क्या जवाब देते हैं उनकी इन बातों का, जिन्होंने अंबिया को भी नहीं छोड़ा अपनी तफासीर के अंदर, इसी उम्मत के उलमा ऐसे गुजरे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर उलमा को फिर आप अवाम से दूर कर दें और अवाम को उलमा से दूर कर दें, तो फिर क्या होता है, इस किस्म के अटैक करने वालों के रास्ते में फिर कोई हायल नहीं रहता, ठीक है। फिर वो जो है वो उलमा को भी नहीं छोड़ते, मशाइख को भी नहीं छोड़ते, वो फिर सहाबे कराम को भी नहीं छोड़ते, और फिर वो नबियों को भी नहीं छोड़ते, नबियों को भी जो है वो फिर बुराई के अंदर घसीट लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत के उलमा से कितना जबरदस्त काम लिया है कि उन्होंने एक एक चीज को जो है ना वो क्लियर करके रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि बस ये इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपका पीछा छोड़ देंगे कि ये जो बात लिखी ना हजरत ने कि गुनाह को नामे अमाल मिले, तो अगर वो उसके ऊपर अमल कर ले, ठीक है ना, और अगर उसको छोड़ दे तो गुनाह की बजाय उसके नामे अमाल में नेकी दर्ज कर दो, है ना, यानी वसवसा आया, तमाम जो है वो असबाब आ गए, लेकिन उसने चूंकि गुनाह को छोड़ दिया मेरे खौफ की वजह से, मेरी खशियत की वजह से, तो उसके नामे अमाल के अंदर नेकी दर्ज कर दो, ठीक है ना। तो कितना फायदा हो गया, ठीक है ना, कि गुनाह को छोड़ दिया, जिस चीज को वो गुनाह मानता था, जिस चीज को गुनाह समझता था, उसको अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ दिया, कितना बड़ा मुकाम मिल गया उसको, ठीक है ना। दूसरा एक मुकाम, हाँ, तो एक तो ये है कि गुनाह का ख्याल आया, अल्लाह की खशियत की वजह से गुनाह को छोड़ दिया, कितना इंसान को फायदा हो गया, कितनी बड़ी नेकी मिल गई उसको, अब उसके बदले में पता नहीं जन्नत की कौन कौन सी नेमतें उसको मिल जाएंगी। दूसरा भी एक मुकाम है कि गुनाह कर लिया, उस वक्त खशियत नहीं आई उसके दिल के अंदर, उस वक्त उससे जो है वो गुनाह हो गया, है ना भाई, हर बंदा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं होता, हर बंदा तो ऐसा नहीं होता कि जो कि यानी ऐसे हालात के अंदर भी अपने आप को गुनाह से रोक ले, लेकिन तौबा का दरवाजा तो खुला है ना, ठीक है ना, तौबा तो उस वक्त बंद होती है जब जान निकल रही होती है। तो अगर इसने तौबा कर ली तो तौबा करने पे इसको कौन सा मुकाम मिलता है, राइट, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, ये अल्लाह ताला का हबीब बन जाता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाती है इसको गुनाह से तौबा करने के ऊपर, यानी ये अपने आप को रोक नहीं सका था, गुनाह कर चुका, लेकिन करने के बाद अगर उसने गुनाह को गुनाह समझते हुए कि हाँ ये गुनाह किया है मैंने, और फिर उससे तौबा कर ली, फिर उसको कितना बड़ा मुकाम मिल गया, हबीबुल्लाह वाला मुकाम मिल गया भाई, ये छोटे मुकाम है, एक पहला मुकाम भी इतनी बड़ी नेकी मिल गई, दूसरा मुकाम तौबा कर ली और अल्लाह ताला का के महबूबों में से ये शामिल हो गया, ठीक है। लेकिन शैतान ने क्या किया? और जो ये इल्हाद करता है, इल्हाद का जो फितना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये यहां से कैसे रिलेट करता है इस सिचुएशन से? इल्हाद के अंदर क्या होता है कि गुनाह की डेफिनेशन को बदल दिया जाता है ना, दीन की तारीफात को बदल दिया जाता है। जो चीज गुनाह थी उसको गुनाह की तारीफ में से निकाल दिया जाता है, जो चीज नेकी थी उसको गुनाह बना दिया जाता है। ये होता है इल्हाद के अंदर। अब जो शख्स इल्हाद का शिकार हो गया, इल्हाद जब दुनिया में फैल गया, या मुसलमान इल्हाद के अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो उससे क्या होता है कि ना तो पहला वाला मुकाम रहता है उनकी जिंदगी के अंदर कि गुनाह का मौका मिला और उन्होंने जो है ना वो अल्लाह की खशियत की वजह से गुनाह को छोड़ दिया, इतना बड़ा उनको नेकी का दर्जा मिल गया। ना तो वो पहले के काबिल रहते हैं और ना वो तौबा के काबिल रहते हैं, इसलिए कि वो तो उस गुनाह को गुनाह समझ ही नहीं रहे कि वो तौबा करें उससे। तौबा किस बात से करें भाई? तौबा तो गुनाह से की जाती है। जिस चीज को आपने गुनाह ही नहीं समझा उससे आप क्यों तौबा करेंगे? तो उधर से भी गए, इधर से भी गए। इल्हाद का ये इफेक्ट होता है, ठीक है ना? तो कम दर्जे का भी इल्हाद अगर होगा ना, कम दर्जे का भी अगर इल्हाद होगा तो, यानी एक तो इल्हाद है ना जिसमें ईमानी से गए, इल्हाद के भी दो दर्जे होते हैं, एक इल्हाद जिसे ईमानी से गए, दूसरा इल्हाद का कम तर दर्जा होता है जिससे कि गुनाह की तारीफ को चेंज करना, वो कम तर दर्जा इल्हाद का होता है। उससे क्या नुकसान है? ना नेकी मिल रही है, ना तौबा का फायदा मिल रहा है, ठीक है ना? और एक और बात इसी से रिलेटेड जो अभी चंद दिनों पहले आपके साथ शेयर भी करी थी, पता नहीं कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, हम तो बहरहाल जो चीज हमसे मुमकिन होती है हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड तो नहीं बल्कि खुद अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में पढ़ाया था, उसके बाद फिर आगे भी उसको किसी भी मदद से उसके पॉइंट्स लिख करके आपके पास भेज देते हैं। उजुब, उजुब और खुद पसंदी वाली जो रूहानी बीमारी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि ये शख्स जो है ना वो गुनाह को गुनाह नहीं समझ, अपने इसको गुनाह अपने नजर ही नहीं आते, इसको अपने गुनाह नजर ही नहीं आते, ये अपने आप को गुनाहगार समझता ही नहीं है। क्योंकि अपने आप को गुनाहगार नहीं समझता इस वजह से तौबा नहीं करता। इसके ऊपर अगर मुसीबत भी आती है ना तो ये उसको अपने गुनाहों की सजा नहीं समझ रहा होता, बल्कि उसको जो है ना वो अपने दर्जात मजीद बुलंद करने के लिए बहाने समझ रहा होता है कि मुसीबत आई है मैं तो बस इसके ऊपर जो है ना वो सोबर एटीट्यूड अपनाऊंगा, है ना, सोबर एटीट्यूड अपना लूंगा और मेरे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। इसको वो सबर कहता है, सोबर एटीट्यूड अपनाने को वो सबर कहता है। हालांकि सबर का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ ये नहीं था सबर का मतलब कि आप सोबर एटीट्यूड में, यानी आप बाल बाल नोचे नहीं, आप कपड़े मत फाड़ें, आप हाय वावेला मत मचाएं, सबर खाली यही है? नहीं, ये तो सबर की एक एक एस्पेक्ट ऑफ सबर है। सबर का असल तो ये है कि आप गुनाहों से अपने आप को बचा के रखें चाहे जैसे भी हालात हों, नेकी के ऊपर जमा करके रखें चाहे जैसे भी हालात हों। तो भाई मुसीबत आनी थी तो इसको गुनाहों से तौबा करनी थी, लेकिन इसको तो अपने गुनाह नजर ही नहीं आते, ये तो अपने आमाल को, अपनी नाफरमानियों को, अपने मासियतों को गुनाह ही नहीं समझता, ठीक है ना? तो ये किस बात से तौबा करेगा? तो ये तौबा की बरकत से, तौबा के फायदों से, तौबा की अजमत से, हर चीज से महरूम हो जाता है, ठीक है? तो उजुब में जो शिकार होता है वो भी तौबा से महरूम हो जाता है, और जो इल्हाद के कमतर दर्जे का शिकार होता है वो भी तौबा से महरूम हो जाता है, ठीक है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के ईमान की भी हिफाजत फरमाए, कुफर से, इल्हाद से, शक से, शिर्क से, सुए अखलाक से, ठीक है? और अल्लाह ताला हम सब के आमाल की भी हिफाजत फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।